जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर तब पियु पियु शब्द पुकार जात पियु पियु कोकिल कंठ गिरा तब गड़ गड़ नभ होत तड़ाकन कणन गिरिवर शिखर बजे बाण रण पट फरड़ फरड़ पद डूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जीजी रंग भर सुंदर राम में ब्रिज की सब बाला रूप रसाला ब्रिज की सब बाला रूप रसाला करिबे भला नंद लाला लागी तन ज्वाला विपद विशाला दिन दयाला नंद लाला आए नहीं आला कृष्ण कृपाला बंसी वाला बनवारी नर सुखकारी मित्र मुरारी गए विचारी गिरधारी रे जीजी गए विचारी गिरधारी रे जीजी गए विचारी गिरधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे
बोलिए
गिरिधारी राधा गिरि आ जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्री गौर निताय की श्री रूपा निताय गौर परमानंद है ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय दो श्लोक क्रमांक सात आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यस्येयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे
गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति गुरुवार इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैंने सुना कि प्रति गुरुवार को यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर प्रवचन होता है। प्रति गुरुवार को आप भगवान श्री कृष्ण की वाणी का अध्ययन और श्रवण कर रहे हो। वास्तव में यह भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, भगवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। गीत का अर्थ, गीता का अर्थ ही होता है गीत, सॉन्ग। इंग्लिश में इसे सॉन्ग कहते हैं। भगवान के द्वारा कुरुक्षेत्र की भूमि में बहुत सुंदर गीत गाया गया, उसे ही भगवत गीता कहा जाता है। यह भगवत गीता समस्त वेद और शास्त्रों का सार है। श्रीपाद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य सब लोग जानते हैं, उन्होंने कहा है सर्व उपनिषदों गावो। जितने भी उपनिषद है, जितने भी वेद शास्त्र पुराण और उपनिषद है, ये सब गाय के समान है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धम गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। समस्त उपनिषद यदि गाय के समान है तो जैसे गाय का सार दूध होता है, वैसे सभी उपनिषदों का सार यह भगवत गीता है। सभी वेद और शास्त्रों का एसेंस है, सार है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर इस पूरे जगत विश्व ब्रह्मांड को इस भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। ये भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आज से 5000 वर्ष पहले भी उपयुक्त था, और आज भी यदि कोई इसका अध्ययन करे और इस गीता के अनुसार अपना जीवन व्यापन करे तो इस कलयुग में भी वह सुखी हो सकता है और मृत्यु के बाद भगवान के धाम को प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन सभी वैष्णवों को प्रतिदिन करना चाहिए। कहते हैं जैसे गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि आप बुद्धि से विचार करो तो यह गंगा क्या है। गंगा इतनी पवित्र इसलिए है, आप देखते हो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक लाखों लाखों जीवों को पवित्र करते हुए चलती है। प्रश्न उठाया जाए ये गंगा है क्या। ये गंगा भगवान श्री विष्णु का चरणोदक जल है। भगवान ने जब वामन अवतार लिया और दो कदम में विश्व ब्रह्मांड को नापा, दूसरे कदम में जब ऊपर के लोगों को नाप रहे थे तो उसके अंगूठे से विरजा सागर के जल को स्पर्श हो गया और वही ब्रह्म लोक में आया और ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण किया। और सगर राजा के 60,000 पुत्र जब भगवान कपिल देव जी के अपराध से जलकर भस्म हो गए, तब उन्हीं के परंपरा में आने वाले राजा भगीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या करके गंगा को ब्रह्म लोक से इस पृथ्वी लोक में उतारा। गंगा भगवान के चरण का जल है। यदि कोई भगवान के उस चरण के जल में स्नान करता है तो पवित्र हो जाता है। सब लोग इस पर विश्वास करते हैं।
और ये सत्य है। तो भगवान के चरण के जल में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो बताइए भगवान के मुख से जो निकला है उसमें यदि कोई स्नान कर ले तो क्यों पवित्र नहीं होगा। वह गंगा भगवान के चरणों से निकली है और भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। पद्म नाम भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता एक श्लोक भी यदि जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन धन्याति धन्य हो जाएगा। परंतु दुख की बात यह है कि संसार के लोग भगवत गीता को जानते तक नहीं है। यद्यपि यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इस संसार में जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों के एक मुख्य ग्रंथ होता है। अब देखिए मुसलमान धर्म का ग्रंथ है कुरान और क्रिश्चियन लोगों का धर्म ग्रंथ है बाइबल। आप देखिए सभी धर्म ग्रंथों में भी भगवद गीता कितनी महान है। कुरान किसने लिखा है? मोहम्मद पैगंबर ने। मोहम्मद पैगंबर ने कुरान लिखा और कुरान लिखते हुए उसमें मेंशन किया है कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक पैगंबर हूं, एक दूत हूं। तो कुरान लिखने वाले भगवान नहीं थे, भगवान के दूत थे, पार्षद थे। और बाइबल लिखने वाले जीसस क्राइस्ट, वे खुद बाइबल में लिखे हैं आई एम नॉट अ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं। तो देखिए कुरान भगवान के दूत ने लिखा, बाइबल भगवान के पुत्र ने लिखा, परंतु गीता किसने लिखी? साक्षात भगवान कृष्ण ने। और भगवान कृष्ण ने इस गीता में मेंशन किया है, कहा है अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सबका ईश्वर हूं, मैं ही सबका स्वामी हूं। और यह समस्त प्रकृति मया दक्षिण प्रकृति सूर्यते सचराचरन, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का स्वामी ईश्वर प्रभु मैं ही हूं। और भगवान जब ये बोल रहे थे तो उस कुरुक्षेत्र की भूमि में करोड़ों अरबों लोग खड़े थे, किसी ने बहिष्कार नहीं किया, सब लोग ने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण ही परमेश्वर है। परंतु हम ही अपने आप को इतना ग्रेट समझते हैं, संसार के लोग भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत दुख की बात है, कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, संसार के किसी साधारण व्यक्ति को भगवान बना लेंगे, जो हमारी तरफ पैंट और शर्ट पहनकर घूमता रहता है, बड़ी बड़ी मूछें रखता है, दांत भी गिर जाता है, उसे बुखार भी आता है, परंतु मानते हैं भगवान है। क्या भगवान को कभी बुखार चढ़ता है? भगवान कभी बूढ़े होते हैं? भगवान भगवान होते हैं, षड ऐश्वर्य पूर्ण होते हैं। तैसे भगवान के मुख से यह भगवत गीता निकली है। तो आप सब लोग इस भगवत गीता को लिंक से यहां पर सुन रहे हो, इसलिए मैं भी आपके लिंक को तोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसी परंपरा में उसी के अनुसार इसको आगे चलाता हूं। आपने पिछले प्रवचन में यदि याद हो तो सुना होगा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है कि हे कृष्ण, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भेक्षम अपीह लोके। हे कृष्ण, मैं किस प्रकार मेरे गुरुजनों के ऊपर बाण चलाऊं? भूमिका तो आप सब लोग जानते हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि में एक और कौरवों की सेना है, एक और पांडवों की सेना है, और अर्जुन अपने शत्रुओं को देखने के लिए भगवान को आदेश करते हैं कि हे कृष्ण, सेन्योर उभयोर मध्ये रथम स्थापी में अच्युत, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। और जब अर्जुन अपने शत्रुओं को अपने विरुद्ध पक्ष में अपने ही मामा दादा चाचा को देखता है तो विचलित हो जाता है और कृष्ण से प्रार्थना करता है कि कृष्ण, किस प्रकार में मैं मेरे गुरु को मारूं? अर्जुन के विरुद्ध में गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे जिन्होंने अर्जुन को धनुष विद्या सिखाई थी। अर्जुन के विरुद्ध में उनके सभी भाई खड़े थे, पितामह भीष्म खड़े थे। अर्जुन कृष्ण को कहने लगे, किस प्रकार में यह सब लोगों को मारूं? यह सब लोगों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर अपना जीवन बिता लूं। वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति की यह सज्जनता है कि किसी को मारना काटना नहीं चाहता है, परंतु अर्जुन का एक दोष है कि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं बेचारा अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, परंतु ये कृष्ण ने कैसी भी करके युद्ध करके सबको मरवा डाला। नहीं नहीं, वैसे तो सब लोग मरने के योग्य ही थे, क्योंकि अर्जुन के विरुद्ध में जितने भी कौरव थे सब लोग अधर्मी थे, और अधर्म का विनाश करने के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधुनाम इत्यादि। यद्यपि भगवान अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन क्यों ना कह रहे हो, युद्ध करो। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव मित्रता का है, साख्य भाव है। अर्जुन कृष्ण को अपना सखा मानता है और कृष्ण भी अर्जुन को सखा मानते हैं। साख्य भाव में भक्ति चल रही है, इसलिए एक मित्र जितनी हद तक अपने मित्र को समझा सकता है, भगवान कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन युद्ध करो, इस प्रकार से युद्ध छोड़ना नहीं चाहिए। परंतु अर्जुन फिर भी भगवान की बात को नहीं माना। तब अर्जुन फिर से कहते हैं कि हे कृष्ण, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। जो आज का श्लोक है, अर्जुन कृष्ण को संपूर्ण शरणागत होते हुए कहता है कि हे कृष्ण, कार्पण्य दोषो कृपण दुर्बलता के कारण मैं मेरा धैर्य खो चुका हूं, मैं मेरी बुद्धि खो चुका हूं। होता है इस संसार में कभी कभी हम लोग ऐसी मुसीबत में, ऐसी उलझन में फंस जाते हैं कि हमें क्या करना है हम ही नहीं जानते हैं। प्राय संसार में प्राय लोग अर्जुन की तरह इस प्रकार से फंसे हुए हैं कि स्वयं खुद को क्या करना चाहिए वह नहीं जानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं विवाह कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो बेचारा विवाह करता है, विवाह करने के लिए बहुत धन कमाता है, धन कमाने के लिए गधे की तरह मेहनत करता है, और विवाह करने के बाद बेचारा थोड़ा बहुत सुखी था वह भी दुखी हो जाता है। व्यक्ति सोचते हैं कि मैं यह करूंगा सुखी हो जाऊंगा, यह करूंगा सुखी हो जाऊंगा, परंतु सारे प्लान फेल हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति यह भी नहीं जान सकता है, यह भी नहीं समझ सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खो चुका हूं, मेरी बुद्धि खो चुका हूं। इसलिए प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, इसलिए हे कृष्ण मैं आपको पूछ रहा हूं कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रश्न होता है, अर्जुन ने इसके पहले नहीं पूछा था कृष्ण को क्या करना चाहिए? पूछा था, परंतु इस श्लोक में अर्जुन विशेष रूप से कृष्ण को बता रहे हैं। भक्तों, ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का सातवां श्लोक इस भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट है। अब तक आपने सुना कि किस प्रकार से दोनों सेना आई, खड़ी रही, ये शंख बजाया, वो शंख बजाया, परंतु अब तक भगवान कृष्ण ने उपदेश प्रारंभ नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भगवत गीता, वास्तविक भगवत गीता दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक से प्रारंभ होती है। क्यों, ऐसा क्या है इस श्लोक में, अर्जुन के इस व्यक्त वक्तव्य में ऐसा क्या है जिससे भगवान भगवत गीता प्रारंभ किए और अब तक नहीं किए? इसका उत्तर देते हुए अर्जुन ही कह रहे हैं कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, अब तक तो मैं आपका मित्र था और मित्रता में आपने मुझे बहुत सलाह दी, परंतु अब मैं आपका मित्र नहीं हूं, अब मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। शिष्यस्ते अहम्, मैं आपका शिष्य हूं। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, और मैं आपके चरणों में हूं। आप मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो यत श्रेयस्य, मेरे लिए जो उचित हो श्रेय हो कृपया करके वह बताइए। वास्तव में हम भी संसार में अर्जुन की तरह ही फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं और मोह माया में बंधे हुए हैं। तो हमें भी जैसे अर्जुन कृष्ण को गुरु स्वीकार करते हैं, वैसे हमें भी किसी योग्य गुरु के चरणों में जाकर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि बताइए गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए। और गुरु के पास जाकर यह नहीं कहना चाहिए कि गुरुजी गुरुजी एक ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मैं करोड़पति बन जाऊं। देखिए अर्जुन सिखा रहे हैं, अर्जुन ने क्या कहा कि प्रभु आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए करोड़पति बन जाऊं या लखपति बन जाऊं या इस युद्ध को जीत लूं, कुछ नहीं। अर्जुन ने यही कहा कि मैं नहीं जानता हूं मेरे लिए क्या उचित है, मैं नहीं जानता हूं मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, परंतु प्रभु आप जानते हो, इसलिए यत श्रेय स्यात, मेरे लिए जो श्रेय हो वह बताइए। इस संसार में प्रायः कुछ लोग गुरु के पास जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जाते हैं, परंतु गुरु के पास जाकर अपना श्रेय नहीं पूछते हैं, अपना प्रेय पूछते हैं। दो शब्द हैं शास्त्र में, श्रेय और प्रेय। श्रोताओं में भी कुछ लोग श्रेय श्रोता होते हैं, कुछ प्रेय श्रोता होते हैं। श्रेय का अर्थ होता है कि हमारे लिए जो उचित हो वे वक्ता हमें बताए, और प्रेय का अर्थ है हमें मजा आ जाए, ऐसा कुछ बताएंगे तो आनंद आ जाए। आप देखते हो कई कई जगह पर ऐसा ऐसा आयोजन होता है जहां पर रात भर भजन कीर्तन होता है, रात भर सब लोग मुंडी हिलाते रहते हैं, वाह 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 वाह, रात भर भजन कीर्तन करते हैं, यद्यपि कृष्ण का नाम लेते हैं परंतु वे श्रेय नहीं है, वह प्रेय है, स्वयं को जो अच्छा लगे। और गाने वाले का भी कोई ठिकाना नहीं, सिगरेट पी बिना तो वह गा नहीं सकता है, जर्दा और खेनी खाए बिना तो वह बजा नहीं सकता है। वैसे लोग गाते हैं, रात भर गाते हैं बजाते हैं, और रात भर हजारों लोग, अब यहां तो 200-300 लोग होंगे, वहां हजारों लोग बैठते हैं, हजारों लोग अपनी मुंडी हिलाते हैं, परंतु जैसे ही सुबह होता है वैसे अपने अपने काम में लग जाते हैं। हृदय परिवर्तन किसी का नहीं होता है, क्यों? क्योंकि प्रेय सुनने के लिए बैठे हैं, अपने को जो रुचिकर लगता है वह सुनने बैठे हैं। और वे वक्ता भी जानते हैं कि ये लोग को खुश करना है, इसलिए उन लोगों की प्रशंसा करते हैं, किसी का नाम लेते हैं और ऐसा जोक्स बोलते रहते हैं, सबको हंसाते हैं और सबको आनंद आता है। इससे जीवन का श्रेय नहीं होता है, इसलिए श्रोताओं को और शिष्यों को चाहिए कि गुरु के पास जाकर यह कहना चाहिए कि मेरे लिए जो उचित हो यह बताइए। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक बहुत बड़े आचार्य हो गए जिसका नाम था सनातन गोस्वामी। यद्यपि वे विद्वान थे, भगवान के परम भक्त थे, परंतु जब प्रथम बार चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा, के आमी, के आमी केने आमाय जार ताप त्रय, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं इतना दुखी क्यों हूं, संसार के ये तीनों ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। क्या वे नहीं जानते थे इस संसार के गुरु होते हुए भी, क्या वे नहीं जानते थे? जानते थे, परंतु फिर भी जब गुरुजन हमें मिलते हैं तो उसे यही प्रश्न करना चाहिए, मेरे लिए जो उचित हो यह बताइए। अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं यत श्रेयस्य, मेरे लिए उचित हो कृपया करके वह उपदेश दे। पर हे कृष्ण, अब तक तो मैं आपका मित्र था, परंतु अब मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हैं। वास्तव में अब तक कृष्ण ने अर्जुन को अपना शिष्य नहीं माना था, परंतु जैसे ही अर्जुन भगवान के चरणों में बैठ गया और बैठकर कह दिया कि अब सौंप दिया सब भार भगवान तुम्हारे चरणों में, हे प्रभु आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश दे। और इतना कहते ही भगवान पहला ही शब्द अपने मुख से निकाले, अर्जुन सत्य कहूं तो तुम मूर्ख हो।
अशोच्यानंद शोचतम प्रज्ञा वादांश भाषसे गतासुन गतासुंश नामु शोचंती पंडिता। वैसे तो बड़े बड़े पंडितों की तरह बात कर रहे हो परंतु तुम में बुद्धि नहीं है। अब तक भगवान ने ऐसा नहीं कहा, आप देखिए क्यों, क्योंकि मित्र थे। मित्र को ऐसा कहे तो बेचारे को बुरा लग जाए और झगड़ा भी करने लगे, परंतु जैसे ही गुरु स्वीकार किया तो गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य की जो स्थिति है वो बताए। भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कि वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, वास्तव में जिसके लिए शोक करना चाहिए उनके लिए नहीं कर रहे हो, और जिनके लिए शोक नहीं करना है उनके लिए शोक कर रहे हो। जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, भक्त होते हैं, वे यह सब बातों के लिए शोक नहीं करते हैं। मात्रा स्वशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाई नो नित्यास्तांसी तिक्षिस वारत। अर्जुन, ये सुख और दुख जीवन में आते रहेंगे, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, जैसे ठंडी के बाद गर्मी की सीजन, गर्मी के बाद ठंडी, वैसे सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते रहेंगे। परंतु धीर व्यक्ति को चाहिए कि उससे विचलित न हो। नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनादिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयमत परम। बहुत सुंदर भगवान आत्मा का ज्ञान देंगे आगे, परंतु मैं इस श्लोक को क्लियर करना चाहता हूं। इस श्लोक का भाव प्रभुपाद जी बहुत सुंदर देते हैं कि संसार में किसी भी व्यक्ति को तब तक ज्ञान नहीं मिल सकता है जब तक वह गुरु स्वीकार न करे। सभी व्यक्ति को चाहिए कि वे गुरु को ग्रहण करे, बिना गुरु के ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरु का अर्थ होता है गु शब्द अंधकार, गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, और रू शब्द तत् निरोधक, और रू शब्द का अर्थ होता है उसको मिटाने वाला। जो ज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में लेकर जाता है, जो कृष्ण भक्ति प्रदान करता है, उसे गुरु कहा जाता है। और भगवान कृष्ण भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। कल की कथा में आया था 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद यह मनुष्य देह मिलता है तो कितने साल के लिए? केवल 100 साल के लिए। प्रहलाद महाराज इसलिए कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थतम। बहुत दुर्लभ है यह मनुष्य जीवन, और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि कोई व्यक्ति गुरु स्वीकार नहीं करता है तो पुमान भवाब्धि न तरेस आत्महा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके गुरु स्वीकार नहीं करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करने वाला है, तो कसाई से भी बदतर है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके गुरु सबको बनाने चाहिए, और यह उपदेश देने के लिए स्वयं भगवान भी इस संसार में आते हैं और गुरु ग्रहण करते हैं। आप देख लीजिए भगवान के जितने जितने अवतार हुए, त्रेता युग में चलिए भगवान श्री रामचंद्र, क्या भगवान को गुरु बनाने की आवश्यकता है? परंतु भगवान रामचंद्र भी गुरुकुल में गए इस संसार को शिक्षा देने के लिए। मैं भगवान हूं फिर भी गुरु की आवश्यकता है, तो आप जैसे जीवों को गुरु की आवश्यकता नहीं है। वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाके श्वास सहज श्रुति चारी। कहते हैं कि जिनके सांस से वेद की ध्वनि प्रकट होती है। ये समस्त वेद क्या है? भागवत के 6वें स्कंद में यमराज जी यमराज के दूत कहते हैं ये सभी वेद और शास्त्र भगवान के सांस है। अरे भगवान की बात छोड़ दीजिए, भगवान जो वाहन रखते हैं व्हीकल, जैसे यहाँ के लोग मोटर बाइक या कार रखते हैं, तो भगवान का भी अपना एक साधन है, वाहन है। पता है कौन है? गरुड़ जी। भागवत में लिखा है कि गरुड़ जी जब चलते हैं, हमारा वाहन जब चलता है तो धुएं के अलावा कुछ नहीं छोड़ता है। भगवान विष्णु का वाहन जब चलता है तो गरुड़ जी के पंख से साम वेद की ध्वनि निकलती है। अब भगवान के वाहन से वेद निकलते हैं तो भगवान के सांस से वेद प्रकट हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
भगवान जब गुरुकुल में जा रहे हैं तब गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में कि जाके श्वास वेद श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसके सांस से वेद प्रकट होते हैं वे भगवान पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा कौतुक है, तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। परंतु फिर भी आपने आचरी प्रभु जीवे सिखाए, इस जीवों को संसार के लोगों को सिखाने के लिए भगवान गुरु ग्रहण करते हैं। केवल राम ही नहीं, भगवान कृष्ण भी गुरु स्वीकार किए। भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र जी को अपना गुरु स्वीकार किए। भगवान कृष्ण सांदीपनि मुनि को अपना गुरु स्वीकार किए और उसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए मथुरा से उज्जैन गए और उज्जैन जाकर यद्यपि 64 दिन में सारी कला सीख लिए परंतु सीखने गए। बताइए कृष्ण को कौन से गुरु की आवश्यकता है? इस गीता में कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े खड़े कहते हैं बुद्धिम बुद्धि मताम अस्मि, सभी बुद्धियों के बुद्धिमता मैं हूं। और भूमि राप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये अर्जुन ये आठों प्रकार की प्रकृति और उसमें बुद्धि ये क्या है? ये मेरी शक्ति है। इस संसार में बुद्धि चेतना शक्ति सब भगवान से आती है, उस भगवान को गुरु की क्या आवश्यकता है? और इस संसार के सभी गुरुओं के गुरु यदि कोई है तो वह कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो जगत का गुरु है उसे गुरु की आवश्यकता है? कभी नहीं। परंतु हम लोगों के लिए उपदेश दे रहे हैं, अपने जीवन में आचरण करके बता रहे हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो गुरु निश्चित बनाइए। और केवल कृष्ण ही नहीं, इस कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने भी गुरु बनाया, और एक नहीं दो दो गुरु बनाए, ईश्वर ईश्वरपुरी और कौन, हाँ केशव भारती, ये दोनों को अपने गुरु बनाए। तो गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, गुरु के बिना ज्ञान कभी नहीं हो सकता। अरे गुरु के बिना शास्त्र की बात छोड़ दीजिए, गुरु के बिना इस संसार का भौतिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता है। आप अपने बालक को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, यदि कोई कहे कि कॉलेज स्कूल में जाने की क्या आवश्यकता है, टेक्स्ट बुक दे दो और घर पे बैठकर पढ़ाओ, कोई पढ़ सकता है? वही टेक्स्ट बुक है, वही चीज है, परंतु वह पढ़ने के लिए स्कूल में जाना होता है और स्कूल में टीचर उसे पढ़ाते हैं, और टीचर इंग्लिश शब्द है उसे हिंदी या संस्कृत करो तो वह गुरु होता है। बिना गुरु के कोई गणित और इतिहास भी नहीं पढ़ सकता है तो यह गीता और भागवत कैसे पढ़ पाएगा? कुछ लोग कहते हैं गीता में, मेरे घर पर गीता है परंतु समझ में नहीं आ रही है। कैसे समझ में आएगी? गणित और भूगोल समझ में नहीं आता है तो गीता समझ में आ जाएगी? इस संसार का साधारण भौतिक विषय समझ में नहीं आता है तो ये गीता ऐसे ही समझ में आ जाएगी? इस गीता को समझने के लिए गुरु धारण करना है। तब बहुत बड़ा प्रश्न यह उठा कि गुरु किसको बनाया जाए। अब मैं केवल यही कहता रहूंगा गुरु बनाओ तो कल उठकर रास्ते में खड़े रह जाएंगे, चलो गुरु बनाओ जैसे रिक्शा को पकड़ते वैसे गुरु को पकड़ेंगे। और आज तो संसार में इतने बोगस गुरु हैं, गुरु बनने के लिए सब लोग तैयार है, पान वाला भी गुरु बनना चाहता है, सब लोग गुरु बनना चाहते हैं, परंतु वास्तविक गुरु कौन है, गुरु किसे बनाना चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय है। यदि गलत गुरु बना लिए तो यह जीवन नरक की ओर चला जाएगा। इसलिए सभी वेद और शास्त्र में लिखा गया है भगवान ने मनुष्य को विशेष बुद्धि दी है, तो यह बुद्धि केवल गधे की तरह मेहनत करने के लिए नहीं, यह बुद्धि योग्य गुरु को चुनने के लिए दी है। तो हम लोग जिसके लिए यह बुद्धि दी गई है उसके लिए यूज नहीं करते हैं और सब दुनिया भर की फजीहत के लिए यह बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जिसके लिए दिया गया है उसके लिए यूज नहीं करते हैं, यह बुद्धि दी गई है योग्य गुरु को स्वीकार करने। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, द्वारकाधीश की। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, बिल्कुल द्वारकाधीश के नीचे ही बैठा हूँ, उनके चरणों की छत्र छाया में। ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। बहुत आनंद हुआ यहाँ पर आकर। बहुत सुंदर जगह है और सबका सुंदर भाव है, और द्वारकाधीश के चरणों में सब लोग बैठे हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो गुरु के बारे में बहुत बहुत है, क्या कितना बोला जाए। वास्तव में भगवान से ज्यादा भी महान तत्व यदि कोई है तो है गुरु। क्योंकि भगवान भगवान तब है जब गुरु हमें बताते हैं कि ये भगवान है, नहीं तो भगवान भी समझ में नहीं आते हैं। गुरु सबको बनाना चाहिए, परंतु गुरु बनाते समय हमारी बुद्धि लगानी चाहिए। अब घुमा फिरा कर बात करने का मूड नहीं है, क्लियर कट आपको बता देता हूं। हमने तो सभी वेद और शास्त्रों का पठन अध्ययन किया है, शास्त्रों का सार क्या है वह आपको कह देता हूं। यदि गुरु बनाना है तो सभी शास्त्रों का निचोड़ है कि उसमें कम से कम पांच चीज होनी चाहिए। समय बहुत कम है इसलिए आपको केवल पांच चीज कह देता हूं। यह पांच चीज यदि किसी में भी हो तो आप गुरु बना सकते हो बिंदास। पांच चीज का ध्यान सबको रखना है। सबसे पहली बात, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा, इसलिए गुरु अवश्य है, जरूरी है। तो गुरु किसे बनाया जाए जिसमें पांच योग्यता हो, पांच चीज हो, तब तैयार हो जाइए सुनने के लिए और याद रखने के लिए। अगले प्रोग्राम में इष्टदेव प्रभु सबको पूछेंगे। तो सबसे पहली योग्यता, ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ये शास्त्र में लिखा है कि गुरु कैसे होने चाहिए। सबसे पहली बात, गुरु भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए। गुरु की जाति पाति कोई भी हो, नो प्रॉब्लम। किबा विप्र किबा न्यासी केने शूद्र नहीं, हे कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। चाहे वो विप्र हो, चाहे वो चांडाल हो, किसी भी कुल में जन्म लिया हो, परंतु यदि कृष्ण से कृष्ण को तत्व से जानता है, कृष्ण का भक्त है, तो वो गुरु बनने के लिए योग्य है। ये पहली योग्यता कि वे कृष्ण का भक्त होना चाहिए। और इसी के साथ साथ अब क्या है, कलयुग में कहना पड़ता है गुरु की दूसरी योग्यता कि वे स्वयं अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। पहली योग्यता कि वह कृष्ण का भक्त होना चाहिए, गुरु की दूसरी योग्यता कि स्वयं अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। अब होता क्या है इस संसार में, कुछ लोग गुरु बनते हैं, प्रवचन करते हैं, सब लोग उनके चरणों में आ जाते हैं, फिर कहते हैं बस मैं ही भगवान हूं, आप मेरा ध्यान करो, मेरा मनन करो, मेरी भक्ति करो, आपका उद्धार हो जाएगा। वे स्वयं भगवान बनकर बैठ जाते हैं। तो जो लोग अपने आप को भगवान मानते हैं वे तो नरक में जाएंगे। भागवत में लिखा है कि जो लोग अपने आप को भगवान मानते हैं वे नरक में जाएंगे, परंतु उसे भगवान स्वीकार करने वाले भी नरक में जाएंगे। लिखा है कि यदि समुद्र को पार करना हो, यदि कुत्ते की पूंछ पकड़ लो तो कुत्ता भी गिरेगा और आप भी गिरोगे। वैसे गलत गुरु को बना लिए तो वह गुरु भी नरक में और हम भी नरक में। इसलिए ध्यान रहे कि वे अपने आप को भगवान नहीं मानने चाहिए। पहला क्या है, कृष्ण का भक्त होना चाहिए। दूसरा, अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। ये दो चीज। अब तीसरी चीज थोड़ी लंबी है। तीसरी चीज है कि उनकी कम से कम छह इंद्रियों को ऊपर वश होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। हमारे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में प्रथम श्लोक में इस बात को रखते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वाद वेगम उदरोपस्त वेगम एतान वेगान यो विशेहत धीर सर्वात्मिपाम पृथ्वीस्थ शिष्यात्। मैं श्लोक इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग को यह न लगे कि प्रभु जी अपनी बात कह रहे हैं, मैं शास्त्र की बात को दोहरा रहा हूं। तो जो गुरु है उसमें देखना चाहिए कि यह छह चीज है, छह चीज के ऊपर उनका कंट्रोल है। सबसे पहले वाणी के ऊपर, वाणी के ऊपर उनका वेग होना चाहिए। वाणी के वेग का अर्थ क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो मोनी बाबा होना चाहिए। इस संसार में कुछ गुरु ऐसे हैं, ज्ञान कुछ नहीं है, बुद्धि कुछ नहीं है, इसलिए मौन बनकर बैठ जाते हैं। और हमारे भारतवर्ष में इतनी अंधश्रद्धा है कि एक दो महीना वो मौन रहेंगे तो सब लोग पूछने लगते हैं, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। परंतु वह गुरु जब बोलेगा तब पता चलेगा इसमें कितनी बुद्धि है। तो वाणी के वे का अर्थ होता है कि वे गलत चीज कृष्ण कथा के अलावा और कुछ न बोले, कृष्ण की कथा और कृष्ण का नाम बोले। वाणी के ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए, मन के ऊपर वश होना चाहिए, क्रोध के ऊपर वश होना चाहिए, जिह्वा के ऊपर वश होना चाहिए, उदर के ऊपर वश होना चाहिए और उपस्थ के ऊपर वश होना चाहिए। यह है गुरु की तीसरी योग्यता। रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से यदि छह इंद्रियों के ऊपर आपका कंट्रोल है, वश है, तो इस पृथ्वी में कहीं भी वह गुरु शिष्य बनाने के योग्य है। तो फिर से याद कीजिए, पहला कृष्ण का भक्त होना चाहिए, दूसरा अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए, तीसरा छह इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कौन सी? वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर और उपस्थ। ये तीन योग्यता है। अब चौथी योग्यता सुनिए कि वे गुरु जो उपदेश देते हैं उस उपदेश का पालन उनके जीवन में होना चाहिए। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो उपदेश बड़े बड़े करते हैं परंतु वो उस उपदेश का पालन वे अपने जीवन में नहीं करते हैं। वैसे ही संसार में बहुत देखे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण करते हैं, हजारों लोगों को एकत्रित करते हैं और ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, परंतु वे स्वयं उनका पालन नहीं करते हैं। आप देखिए, यदि गुरु स्वयं आचरण नहीं करते हैं तो दूसरों को एक नहीं हजारों बार भी वो कहे फिर भी वो सुधर नहीं सकता है। आप देखिए, कुछ गुरु ऐसे हैं जब वो कथा करते हैं तो लाखों लोग जमा होते हैं परंतु उस लाखों में से हृदय परिवर्तन एक व्यक्ति का भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गुरु स्वयं आचरण नहीं कर रहे हैं, उनका उस चीज के ऊपर आचरण होना चाहिए। इसके ऊपर आचार्यगण एक कथा कहते हैं कि एक गांव में ऐसे ही एक गुरुजी रहते थे और वे जब प्रवचन करते थे तो पूरा गांव एकत्रित हो जाता था, इतना सुंदर प्रवचन करते थे। परंतु उसके प्रवचन में उनकी पत्नी नहीं आती थी। होता है, कुछ भक्तों की स्थिति ऐसी होती है, खुद भक्त है, दुनिया वालों को भक्ति में लगा रहे हैं परंतु घर के लोग ही, बाल बच्चे और पत्नी ही भक्ति में नहीं है। भगवान उसके ऊपर कृपा करे। परंतु यहां पर ऐसा नहीं था, इनकी पत्नी उनके प्रवचन में नहीं आती थी। तो गांव वालों ने एकत्रित होकर उनकी पत्नी को कहा कि आपके पतिदेव इतना सुंदर प्रवचन करते हैं, पूरा गांव उनका प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, आता है, आप क्यों नहीं आती हो? तब उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे पतिदेव जब प्रवचन करने के लिए जाते हैं तो उस समय उनके लिए मुझे भोजन बनाना होता है। तो गांव वालों ने कहा उसमें क्या है, आप पहले भोजन बना लीजिएगा और प्रवचन में आ जाइएगा। तब उस गुरुजी की पत्नी ने कहा ठीक है, तो मैं ऐसा ही करूंगी। तो दूसरा दिन हुआ, गुरुजी के प्रवचन का समय हुआ और प्रवचन के पहले ही सारा भोजन बना लिया और उस प्रवचन में जाकर गुरुजी की पत्नी भी बैठी और उस समय गुरुजी ने प्रवचन प्रारंभ किया। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। यदि सत्व गुण में हो तो आप ऊपर के लोगों को जा सकते हो, रजो गुण में हो तो इस पृथ्वी पर रह जाओगे, यदि तमो गुण में हो तो नरक में जाना पड़ेगा और नरक में जाने से बचने के लिए तमो गुण में कभी नहीं आना चाहिए और तमो गुण न लाने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, द्रव्या स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। तमोगुण से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए तमोगुणी आहार नहीं खाना चाहिए। तो पूछा गया क्या नहीं खाना चाहिए? प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, अंडा और मांस नहीं खाना चाहिए। सब लोग ने तालियां बजाई, वाह गुरुजी वाह, क्या प्रवचन करते हैं। लेकिन गुरुजी ने जब कहा कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, तुरंत उसकी पत्नी खड़ी हो गई और खड़ी होकर घर की ओर दौड़ने लगी और गुरुजी यहां पर प्रवचन समाप्त किए और समाप्त करके जब घर पर आए तो कहा प्रतिदिन की तरह भोजन पिरोसा। गुरुजी ने जैसे ही वह भोजन एक निवाला अपने मुख में डालते ही उसको थूक दिया। ये क्या बनाया तुमने? कल तक तो बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाती थी, आज क्या हो गया तुमको? तब उस गुरुजी की पत्नी हाथ जोड़कर कहती है कि पतिदेव, पतिदेव इतने दिनों से मैं आपका अपराध कर रही हूँ, इतने दिनों से मैं आपको दुखी कर रही हूँ, इतने दिनों से मैं आपको परेशान कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि हमें प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। ये तो जब मैं आपके प्रवचन में आई तब मुझे पता चला कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, और मैंने प्याज और लहसुन वाला भोजन बनाया था। परंतु जैसे आपके प्रवचन में सुना तो मैं घर पर आई, प्याज लहसुन वाला भोजन फेंक दिया और बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाया है आपके लिए। तब उस गुरु जी ने कहा कि अरे पागल, अरे मूर्ख, ये उपदेश तो गांव वालों के लिए है, मेरे लिए तो डबल तड़का लगाकर कांदा और लहसुन वाला भोजन बनाना चाहिए। अब ऐसे गुरु के पास जीवन भर यदि कथा सुनते रहो कभी उद्धार नहीं होगा। जो स्वयं भोगों से मुक्त नहीं है, जो स्वयं यह सब आदतों से मुक्त नहीं है, वो दूसरों को कैसे मुक्त करा पाएंगे। कुछ लोग भागवत सप्ताह का आयोजन करते हैं, भागवत कथा करने वाले कथा से पहले नक्की करते हैं कि हम इतना लाख रुपए लेंगे। कुछ लोग 10 लाख 15 लाख, नाम लेना नहीं चाहता हूं, हम तो बहुत लोगों को जानते हैं। परंतु आप अपनी छोटी सी बुद्धि लगाइए कि भागवत कहने वाला धन की आसक्ति से मुक्त नहीं हुआ है तो उससे सुनने वाला कैसे आसक्ति से मुक्त होगा। भागवत सुनने वाला यदि एक तुच्छ धन की आसक्ति से मुक्त नहीं हुआ तो सुनने वाला जीवन की आसक्ति से कैसे मुक्त होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए गुरु उसे बनाना चाहिए जो निष्काम हो, जो बोले उसका आचरण अपने जीवन में भी करे। तो आप शॉर्टकट में समझ जाइए ये गुरु की चौथी योग्यता। फिर से गिनिए, पहली वे कृष्ण का भक्त होना चाहिए, दूसरा अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए, तीसरा 6 इंद्रियों पर वश होना चाहिए, कौन सी, मन वाणी मन क्रोध जीवा उदर रूपस्थ, और चौथा आचरण होना चाहिए, वे जो बोलते हैं उसका आचरण अपने जीवन में होना चाहिए। अब पांचवी योग्यता और मुख्य योग्यता आपको कह दूं, और ये पांच योग्यता में से एक भी योग्यता यदि नहीं है तो उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए, ध्यान रखिए। और ये पांच योग्यता किसी में भी है तो उसे तुरंत गुरु बना लीजिए, वे गुरु बनने के योग्य। पांचवी योग्यता क्या है आप सुन लीजिए, पांचवी योग्यता यह है कि वे 4 संप्रदाय में से किसी भी एक संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए। वास्तव में इस संसार में भगवान के द्वारा बनाए गए 4 ही संप्रदाय हैं, पांचवा नहीं है। आज तो लोग अपने आप को कहते हैं कि आज एक नया संप्रदाय खुला है। अरे संप्रदाय हम लोग नहीं बना सकते हैं, हम लोग नहीं खोल सकते हैं, संप्रदाय भगवान बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 4 लोगों को ज्ञान दिया और उस 4 लोगों की परंपरा में 4 संप्रदाय खोले। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो ब्रह्म संप्रदाय का निर्माण हुआ। कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया तो रुद्र संप्रदाय का निर्माण हुआ। कृष्ण ने लक्ष्मी को ज्ञान दिया तो श्री संप्रदाय का निर्माण हुआ। कृष्ण ने 4 कुमार को ज्ञान दिया तो कुमार संप्रदाय का निर्माण हुआ। इस प्रकार से यह 4 संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उस लिंक में, उस परंपरा में यदि कोई आता है तो उसे अपना गुरु बनाना चाहिए। अब इसे भी प्रैक्टिकल रूप में आपको कह दूं, कुमार संप्रदाय प्राय लुप्त तो हो चुका है, फिलहाल आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। सोलापुर में 4 4 है, ठीक है सोलापुर में हो सकता है, हमारे बंबई और इत्यादि जगह में नहीं है। अच्छा श्री संप्रदाय, ये जो श्री संप्रदाय है प्राय दक्षिण भारत में है, इनका प्रवर्तन दक्षिण भारत में ज्यादा है। और रुद्र संप्रदाय, भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया जिससे रुद्र संप्रदाय का निर्माण हुआ। इस संप्रदाय, ये संप्रदाय भी जीवित है परंतु इसका, हाँ यही है, परंतु इसमें ये तो प्रकट है कि भक्ति भावना बहुत है, लोगों की सेवा की भावना, लोगों को प्रसाद भोजन खिलाना बहुत है, परंतु इस प्रकार से गली गली गांव गांव में जाकर प्रवचन करना प्रचार करना बहुत कम है। गलत नहीं है, इस संप्रदाय में भी यदि गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा लेता है तो वो ठीक है, परंतु आज के दिन में ठीक से और परफेक्ट गुरु शिष्य परंपरा में जो संप्रदाय चल रहा है वह है ब्रह्म संप्रदाय। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने मध्वाचार्य को, मध्वाचार्य ने पद्मनाभ, पद्मनाभ ने नरहरि, नरहरि ने माधव, माधव ने अक्षोभ्य, अक्षोभ्य ने जयतीर्थ को, जयतीर्थ ने ज्ञानसिंधु, ज्ञानसिंधु ने दयानिधि को, दयानिधि ने विद्यानिधि, विद्यानिधि ने राजेंद्र, राजेंद्र ने जयधर्म, जयधर्म ने पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम ने ब्रह्मण्य तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ ने व्यास तीर्थ, व्यास तीर्थ से लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति से माधवेंद्रपुरी और माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया वह ज्ञान नारद जी को और गुरु शिष्य परंपरा में बिल्कुल चलते चलते ईश्वरपुरी के पास आ गए। तब भगवान ने सोचा कि यह ईश्वरपुरी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इतना प्रचार नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने सोचा कि इस संप्रदाय को रिफ्रेश करने के लिए मुझे जन्म लेना होगा। इसलिए आज से 524 वर्ष पहले साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की और इस संप्रदाय को फिर से रिफ्रेश कर दिया। कंप्यूटर वाले जानते होंगे, डेस्कटॉप के ऊपर रिफ्रेश करते रहते हैं ताकि सब ठीक हो जाए। तो भगवान ने यद्यपि बिल्कुल लिंक में था परंतु और मजबूत करने के लिए भगवान फिर से आए और चैतन्य महाप्रभु ने वही ज्ञान रूप गोस्वामी ने रघुनाथ और जीव को, जीव गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज, कृष्णदास कविराज ने नरोत्तम, नरोत्तम ने विश्वनाथ और विश्वनाथ से जगन्नाथ बाबाजी महाराज के पास यह ज्ञान आ गया। जगन्नाथ बाबाजी महाराज के शिष्य हुए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हुए गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के शिष्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के शिष्य हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, और वही प्रभुपाद जी ने यह इस्कॉन संस्था की रचना की। और प्रभुपाद जी के बाद और भी अन्य शिष्य हैं, आप प्रभुपाद जी के शिष्यों में से किसी भी शिष्य से आप दीक्षा और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में व्यक्ति होना चाहिए, यह गुरु की पांचवी योग्यता है। फिर से अंतिम बार सब लोग याद कर लीजिए, गुरु की पहली योग्यता कृष्ण का भक्त होना चाहिए, दूसरा अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए, तीसरा 6 इंद्रियों के ऊपर वश होना चाहिए, चौथा वे जो बोलता है उसका आचरण होना चाहिए और पांचवा 4 संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा में लिंक में होना चाहिए, उसे आप गुरु बना सकते हो और गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हो। हरे कृष्णा श्री कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारकाधीश की, चैतन्य महाप्रभु की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।